अभी तक जितनी बात की ना ये प्रोडक्टिविटी पे की है। हर एक अपने हिसाब से सोचता सुनता है। अगर ये सारी बात के बाद आपको ये यकीन हो गया ना कि यस यू विल बी प्रोडक्टिव, यस आप खैर का बीज हैं, आप में बहुत कुछ है, तो बस आप कामयाब हैं। यानी जो मैंने बातें की ना ये सारी आप 100% एग्री भी कर लें, फिर भी कुछ लोग अपने लिए सही फैसले नहीं करते। कुछ रुकावटें हैं उनके और कामयाबी के बीच में, उनके और प्रोडक्टिविटी के बीच में, उनके और फ्रूटफुल होने के बीच में। अब एक एक करके ज़रा सा उसका तذکرہ करती हूँ। दो हम एक अलग पिछले सेशन में कर चुके हैं, लेकिन आज शायद कुछ नए लोग भी सुन रहे हों या अलग से जो इस सीरीज को सुनेंगे। तो सबसे पहली चीज़, कंपेयरिंग आवर सेल्फ टू अदर्स। हम अपने तकाबुल में दूसरी चीज़ को ले आते हैं, दूसरों के साथ मुआवजा करते हैं। ये लिखिए, अब मैं आपको एक बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि बड़ा मैथमेटिकल किस्म का सेशन देने लगी हूँ, इसको पार्ट टू कर दीजिए। ये हैं असल में बैरियर्स, कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ होने के बावजूद प्रोडक्टिव क्यों नहीं रहते या होते, या उनका फ्रूट क्यों नहीं उनके पास जाता। वजह यह कि वो दूसरों के साथ अपना मुआवजा करते रहते हैं। इसकी डिटेल सुननी हो तो इससे पीछे वाला जो सेशन है इसी का, अपनी तलाश को उसको सुन ले। यहाँ बस आज की मिसाल से ये कह दूँ, एक है आम का दरख्त, एक है सेब का दरख्त। काम का बीज है, एक सेब का, चलिए ये तो फिर भी अच्छे ही लगते हैं। एक तरफ आम की गुठली और दूसरी तरफ करेले का बीज। अब मुझे बताइए, अगर करेला बेचारा जलता ही रह जाए कि मुझे करेला क्यों बनाया, मुझे ये खूबी क्यों नहीं दी। वो देखो आम, फलों का बादशाह, इतना बड़ा, पीला, मज़े का, अब रोते रहे रोते रहे रोते रहे। मुझे बताइए, क्या रो रो के वो करेले का बीज आम का बीज बनेगा? नहीं बनेगा। ये करते हैं कुछ लोग, अल्लाह से भी लड़ते हैं नाराज़, और बंदों से भी नाराज़, मुझे ये काम क्यों नहीं देते। भाई आप माशाल्लाह, आप तो इतनी आयरन वुमेन है, आप तो वो काम कर सकती हैं जो दूसरे नहीं करते। ये जिसको हमने स्टेज पे कह लीजिए या रिसेप्शन पे बिठा दिया, वो तो नाजुक सी है बेचारी, शीशा है, फ्रेजल है, टूट भी जाता है। आप आयरन वुमेन है, यू शुड बी इन द फाउंडेशन, आप तो बुनियाद में है। बस मसला ये कि आप नजर नहीं आती ना, आपका काम नहीं दिखता लोगों पर को। पर याद रखे, आपको कभी कोई हटाएगा नहीं। देखिए, जिसने बुनियाद की ईंट निकालनी है उसको पूरी बिल्डिंग गिरानी है। शीशे तो हमारे अपने स्कूल के पिछले 1-2 साल में सारे बदल गए। तो याद रखिए, कभी दूसरों से मुवासना ना करें। करें क्या फिर? बस मैं आपको कहती हूँ, आप आम की दरख्त हैं और मैं करेले का बीज हूँ। मुझे ये सोचना चाहिए, छोड़ो, आम खाने से शुगर हो जाती है और आमों पर मक्खियाँ आ जाती हैं, और आम ज़्यादा खा ले तो गर्मी भी हो जाती है। करेले खाने से आज तक किसी को शुगर नहीं हुई, और पता है जो आम की बीमारी है ना शुगर, उसका इलाज करेलों से होता है। ये क्या करें, दूसरों के साथ मुवाजना करें तो अच्छा करें, उसके फ़ायदे उसको मुबारक, मुझे नहीं सजते। तो इंशाल्लाह आपकी ये रुकावट दूर होगी और तकाबुल करना आप छोड़ देंगी। और इस पे हमने देखा था, अभी फिर बोल देती हूँ, इस्लामिक के लिए सोल्यूशन इसका क्या है कि वाताकुम मिन कुल्ली मा सअल्तुमुहू वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ्फार। और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया, और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार ना कर सकोगे। मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और ना शुक्र है। ये आयत किस सूरत की हो सकती है, आप इमेजिन कीजिए। जी, दुनिया के शुक्रगुजार तरीन लोगों में से एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सूरत इब्राहिम और आयत नंबर 34, 34। तो क्या है इसका इलाज? अपनी नेमतों को गिने। एक छोटी सी ट्रेनिंग दूं, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोग उस पर अमल कर ही ले। सिर्फ एक वक्त का खाना जो आप खाएं, आंखों पे पट्टी बांध के खाइए, ठीक है? बस एक वक्त का खाना, फिर आपको पता चलेगा कि अंधे कैसे खाते हैं। फिर किसी एक दिन एक और एक्टिविटी भी कर लीजिएगा। एक ट्रेनर थे तो वो लोगों की ट्रेनिंग में इस किस्म की चीज़ें डालते हैं, तो मैं भी आपको 1-2 चीज़ें उन्हीं की बता देती हूँ। लोग ट्रेनिंग लेने आए, उन्होंने कहा कि दो दो लोग अपनी एक एक टांग इकट्ठी बांध लो और जाओ जिधर मर्जी फिरो। और कुछ को क्या किया कि एक टांग सीधी तो दूसरी ज़रा सी बांध दी। वो जो खाना खा रहे थे ना, जिनको खाने को दिया, वो कहते हैं वो खाना खाने के बाद जब हमारी आंखों से पट्टी उतारी तो धाड़े मार मार के रो रहे थे लोग। अंधे ऐसे खाते होंगे? और जिनकी टांग बंधी वो कहते हैं कि वो वक्त नहीं भूलता कि एक टांग के साथ या दूसरे की बंधी हुई टांग के साथ चलना कितना मुश्किल है। आपने मैंने नेमतों को देखा ही नहीं है। किसी वक्त पूछिएगा मुझसे कि हाथी के बच्चे के साथ क्या करते हैं पैदा होते ही, तो आपको उस पर भी एक स्टोरी सुना दूंगी। इस वक्त हम चलते हैं इस बात पे कि अल्लाह, मैंने तुझसे मांगा तूने दिया, मैंने दिल में चाहा तूने वो भी दिया। यानी जो कुरान की आयत है ना कि अतस्तब्दिलू नल्लज़ीत ना बिल्लज़ी व खैर, कि आला को छोड़ के ना मांगते हो। इस रास्ते में भी कभी ऐसा ही होता है हमारे साथ। अल्लाह हमें मालिक बनाना चाहता है, हम नौकर बनते हैं। अल्लाह हमें मुरब्बों का मालिक बनाना चाहता है, हम 5 मरले के प्लाट पर रोते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए बहुत खैर रखी होती है, लेकिन सब्र चाहिए। अभी देखिए, दरख्त बनने से पहले कोंपल, कोंपल से पौधा, पौधे से दरख्त, फिर दरख्त पत्ते, आखिर में दरख्त बनते हैं। कुछ लोग नीचे खड़े कहते हैं हमें दरख्त बनना है, और कभी आप बन के तो देखें उस दर्जे पे, आपको पता लग जाएगा कितनी आंधियों में सर उठाना पड़ता है। जिम्मेदार बनने तक तो बंदा मंझ चुका होता है। अगर आज आप अंसारुल्लाह बनाए गए हैं ना, अगर आप जमे रहे, पेवस्ता रहे, सीधे चले, चंद साल के बाद आप में से हर एक 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 चीज़ का जिम्मेदार बन चुका होगा। और जिम्मेदार बन के वापस आप गलती करेंगे तो चोट भी बड़ी लगेगी आपको। खैर, आगे चलिए, दूसरी बैरियर लीजिए, बींग स्टक इन स्टेगनेशन विदाउट प्रोग्रेस। क्या पता चला कि बच्चे तो बढ़ते ही हैं, इसकी भी डिटेल पिछले सेशन में काफ़ी हुई थी। देखिए, बच्चा बड़ा होता है ना, इसी तरह दरख्त को भी देखिए कि एक खास हद तक वो फॉर्मेशन चेंज होती है ना। पहले बीज था, फिर अंदर जड़ बना, कुछ दिन के बाद जड़ से कोंपल, फिर उसके बाद होते होते दरख्त बनने में साल 2-3 साल। क्या कहते हैं ना कि बीज डाले दादा तो फल खाए पोता, ये बनना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है, ये नेचुरल ग्रोथ है। लेकिन अगर कोंपल ही कोंपल रह गई और जड़ ही नहीं ऊपर फूटी, तो दैट मीन आप मुश्किल में। ये मैं अक्सर उन चीज़ों के ऊपर सोचती हूँ कि जो ग्रो नहीं कर रहे, जो ग्रो किस तरह नहीं कर रहे, हर एंगल से नहीं कर रहे। 5 साल पहले भी वही काम का तरीका था जो आज है, वही गलती जो 10 साल पहले आप करते थे आपने आज भी की है। अब क्या करूं मैं, ये स्टेगनेशन है। और ये कब होती है, जब हम अपनी कमियां दूसरों के सामने पेश नहीं करते। मैं एक मिसाल देती हूँ आपको कि मुझे कोई एक लिंक किसी ने भेजा, सुने ऐसे ही आ गया होगा, पता नहीं कब क्या मैंने ऑन किया। मुझे शौक है, मैं कभी भी किसी की बात को बुरा नहीं कहती। यकीन करें, उनके खुतबा पढ़ने के अंदाज से मैंने उसको बंद कर दिया। मुझे घबराहट होने लगी, मैंने कहा मैं उस बंदे से कैसे सीखूंगी जिसके बात करने के अंदाज में झोल है, और आगे आयते तो पता नहीं कैसी होंगी। तो याद रखिए, स्टक ना हो, स्टेगनेशन जुल्म है। खड़ा पानी ना पाक तो बहता पानी पा के वजू भी कर लें उससे, आप नहा भी लें, खड़े पानी में नहीं कर सकते। एक खास हद तक अगर उसका है सब कुछ, तो आपकी प्रोग्रेस किधर है? और ये हर एक आप में से, मेरे में से, फिर मैं यहाँ सिर्फ टीचर्स को नहीं कह रही, हम टीचर्स को ही कहते हैं ये दीन, दरख्त टीचर है, टीचर नहीं है दरख्त। उस पे पत्ते किधर हैं, उसकी टहनियाँ किधर हैं, उसका फ्रूट किधर है, उसकी ज़मीन, उसकी खाद किधर है। और हर टीचर को ये चाहिए होता है, बस वो थोड़े से जो हम कोशिशें करके कर, वही स्टूडेंट है, वही टीचर है, वही हमारी टीम। स्टूडेंट टीम है आपकी, स्टूडेंट आपके एडमिन है, तो फिर लिख लीजिए बड़ा बड़ा कि वो अब स्टूडेंट नहीं रहे। वो तो मीटिंग में ऐसे बैठेंगे शौक से, जैसे मैच देखा जाता है, बातें सुनेंगे, मजा आता है हमें। जैसे दुनिया की बातें सुनने में पहले मजा आता था, अब दीन की बातें मजा आता है। वो स्टूडेंट नहीं, वो कहते स्टूडेंट नहीं बनना हमने, क्योंकि आपने उनको क्लासरूम से उठाकर ऑफिस में बुला लिया। तो स्टेगनेशन बहुत बड़ी रुकावट है। आप जो भी काम कर रही हैं इस वक्त, मसलन पढ़ाती हैं तो बिस्मिल्ला, तजवीद है तो बिस्मिल्ला, और इसी तरह जो टीचिंग की चीज़ों के अलावा, यानी एकेडमिक को अगर एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दें, तो आप आज से 5 साल पहले भी एक कोर्स की जिम्मेदार बनाई गई, तो आपने वही गलतियां की जो अब एक 5 साल के बाद के तजर्बे के बाद फिर वही कर रही हैं आप। आपको पहले भी क्लास की एक जिम्मेदारी दी गई थी, तो आपने उसके साथ वही की हरकत जो अब की। पहले भी आप लास्ट मोमेंट पे काम करती थी, आप फिर इसी पे कर रही हैं। पहले भी आपकी गलतियां निकलती थी, अब भी। दिस इज स्टेग्नेशन, वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको जो काम अल्लाह ने दिया ना, उस पर राजी रहें, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो अक्सर को कहती हूँ कि मुझे सिर्फ टीचर रहने दें आप, तो मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि आई लव टीचिंग। मुझे इसमें बेहतरी लानी है, मुझे अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करनी है, मुझे अपने इल्म को पुख्ता करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर मिसाल है कि रिसेप्शन पे थी कल तक, तो हर दिन रिसेप्शन पे आपका अच्छा रंग हो ना, आपके आने से कैंटीन का एक खूबसूरत सा अंदाज हो जाए, तो स्टेगनेंट ना हो। और इसको आप मजीद सुनना हो तो पीछे सुन ले, इस्लाम क्या कहता है, इसका इलाज ले लीजिए। और वो क्या है, आप चलते जाएं, चलते जाएं, बेहतरियों की तरफ अपने आप को डालते रहें। शॉर्टकट्स ना भूलिए, इंस्टेंट सॉल्यूशंस पे ना आइए, चल चलो का मामला ना कीजिए, अपने आप को सजा दें। आप अगर ये गलती दोबारा करें ना तो रोज़ा रखें, फिर आप नफिल पढ़ें, जो नेकी मुश्किल लगती है ना वो करें। हम हमेशा शॉर्टकट्स पे चले जाते हैं, ये कर ये भी हो जाएगा, ये भी कर लेंगे वो भी, तो नतीजा क्या होता है वो आप देख लीजिए। और कभी कभी हाँ हमें कुछ काम दीजिएगा, हम भी कुछ हिस्सा डाल दें। नो, हिस्सा नहीं डालना, हिस्सा बन, और हिस्सा बना हुआ बंदा कभी हिस्से से निकल सकता है? इम्पॉसिबल। ये तो नफिल पढ़ के माफ़ करवाने वाला जुर्म है जो बंदा करे। फिर इसके बाद देखिए कि अगला बैरियर ले लेते हैं, गो थ्रू करूँगी सबको इंशाल्लाह। नॉट हैविंग क्लैरिटी ऑफ माइंड सेट, ये एक तीसरी रुकावट है हमारी प्रोडक्टिविटी के रंग में। दिल और दिमाग मुतमईन नहीं होते, करना क्या है, क्लियर पिक्चर नहीं है। जैसे आप देखिए ना, वीडियो देख रहे हैं और सही पिक्चर ना ब्लरी आए, कितनी को देर आप उसको देखेंगे? आवाज़ आ रही है लेकिन बिस बिस साउंड है पीछे, मुस्तकिल को जिप 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 नहीं सुनेंगे आप। इसी तरह हम जिंदगी में क्लियर गोल नहीं रखते, हमारा माइंड सेट क्लियर नहीं होता, करना क्या है, किधर जाना है, बस वो पता सवाब चाहिए। तो 500 दाने की तस्बीह को 1000 में बदल लीजिए तो आ जाएगा सवाब। बस हम दीन का काम करते हुए भी नहीं पता होता हमें क्या करना है, कहाँ से कहाँ, किधर से किधर। मसलन मैं अपनी मिसाल देती हूँ ना, कि मैं टीचर हूँ, आप मुझे आके पूछते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मैं कहूँगी पढ़ाना है। अब तो जी अल्लाह आखिरी दिन तक पढ़वाए, क्या ये माइंड सेट की क्लैरिटी? मैं कहूँगी क्या पढ़ाना है, आप पूछते हैं मुझसे क्या पढ़ाएंगी, जो मौका मिलेगा कर लूँगी जिधर। अच्छा जी ये आपने क्लास शुरू की हुई है? जी जी, मैं कहूँगी ये मेरी वीकली क्लास होती है। अच्छा, जो जुमला मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी पे ले जाता है वो कि ये मेरे स्टूडेंट हैं। आप सब में से जितने भी इस वक्त स्टूडेंट सुन रहे हैं, अल्लाह जानते हैं कि आप कभी मेरी किसी गुफ्तगू में शौरी तौर पे सुन ले, मैंने कभी ये नहीं कहा मेरे स्टूडेंट, कुरान के स्टूडेंट। अपना मेरे का लफ्ज़ जो होता है ना, उसको हमारे में बदलना पड़ता है प्रोडक्टिव होने के लिए। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड सेट क्या है, चंद सवाल लीजिए खुद से। हाउ मच आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वर्क? आप में से हर एक को जो जो असाइन हुए, और माशाल्लाह अपने कोर्सेज में सैकड़ों वॉलेंटियर्स हैं और सैकड़ों अंसारुल्लाह, सब अपने आप से पूछें, मैं जो भी काम दी गई हूँ, वो ऑडियो टू वीडियो है, वो वीडियो टू ऑडियो है, वो लाइव ब्रॉडकास्ट है, वो प्लानर्स हैं, वो कोर्सेज हैं, वो बच्चों का कोर्स है, मुझे अल्लाह ने बच्चों की टीचर बना दिया, मुझे बच्चों के कोर्स का एडमिन बना दिया, और मुझे अल्लाह ताला ने टीन एजर्स की जिम्मेदारी दे दी है, मैं उर्दू कोर्स में हूँ, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? मैंने उसका ड्यू हक दे दिया? अगला सवाल पूछिए कि दीन का काम करके भी लोग मुतमईन क्यों नहीं होते? ये बहुत बदगुमान करने वाला सवाल और जवाब होता है, सब करते हैं, सुकून नहीं है। तीसरी चीज़ अपने से पूछिए, मेरे काम के नतायज क्या निकलते हैं? मसलन आप कहेंगे ये भी बता दें आप ही, देखिए अगर मैं एक काम कर चुकी हूँ और दोबारा मुझे सेम काम ऑफर हुआ है ना, तो ये है रूट टू फ्रूट और फ्रूट टू सीट। अगर आप अच्छे हैं ना, हमेशा आपको वो काम मिलेगा, और अगर आपने किया ना चल चलो, तो वो कहेंगे चुप कर दें, अब थोड़े से दिन रह गए, फारिग करें इनको। खुद से पूछिए क्या एक ही काम मुझे दोबारा दिया जाता है? ये है आपका नतीजा। आप सेटिस्फाइड बाद में होते हैं, लोग पहले होते हैं, ये भी लिख लें। दूसरे आपको दोबारा बुला लें, बड़ी मेहरबानी। देखिए इसको मार्केटिंग में क्या कहते हैं, बस एक स्टोर है, वो कहते हैं रोज़ आपके पास कितने कस्टमर आते हैं, कहते हैं 500। कहते हैं ये बताइए कि रिपीटेड कस्टमर कितने हैं, कहते हैं वो तो कभी दिखा ही नहीं, दोबारा काट दीजिए, दिस इज़ नॉट प्रोडक्टिविटी। पहली दफ़ा तो कोई आपके फ्लायर को देख कर आ जाएगा, टीवी पे आपके एड को देख कर आ जाएगा, किसी के कहने पे आ जाएगा, बताने पे, दोबारा वो आएगा जो आपके काम से मुतमईन होगा। मुझे कोई दोबारा बुला ले किसी शहर में तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ दिल नहीं भरा आपका, फिर मैं खुश होती हूँ कि इसके अंदर कि पिछली दफ़ा इनको फ़ायदा ही हुआ होगा तो बुलाया ना। तो आप अपना नतीजा खुद बनते हैं, चेक कीजिए मुझे दोबारा वही काम दिया जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसमें स्पेशल हो जाएं। आप एक जुमला लिख कर फॉर्म फिल कर दे, मुझे हर नए कोर्स में ये काम देते, बस आपको पेपर चेक करने आते हैं, आपको ए बी सी डी, कितने तो फील्ड हैं, 20 के करीब लोगों का एक स्टाफ बनता है, फिर एक छोटा सा कोर्स ऑफर होता है, आप कैसे अकेले बैठ के पढ़ा लेते हैं? मुझे यकीन नहीं आता कि ये होता कैसे है। वो कहते हैं मैं अकेली हूँ, फिर जाके लाइटें खोलती हूँ, फिर मैं ऐसे करती हूँ, मैं फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर बीच में कोई बेल होती है तो मैं उठ के डोर भी खोलती हूँ। सॉरी, अच्छा तरीका है लेकिन ये रूट से फ्रूट और फ्रूट से सीट बनने वाला नहीं। आप हैं तो करेंगी, कल आप बीमार हो गई तो छुट्टी हो जाएगी आपकी। और वो कहते नहीं वो मेरे पीछे हैं मेरे स्टूडेंट, वो मेरे बगैर काम चला लेते हैं। तो वो स्टूडेंट कैसे हैं जो पूरा किए बगैर टीचर बन गए? कच्चे पक्के फल खट्टे होते, आम दरख्त से लग के पक के गिरेगा ना मीठा, गिरने से भी पहले माली उतार लेता है, कौन जाया करता है अपनी कीमती चीज को, इतनी मेहनत जिन फसलों पे होती है, जब वो आप उनको बिखरा दिखते हैं, फिर दिल खून के आंसू होता है उन लोगों को जो कुरान के पूरे कोर्सेज करके बिखर जाते हैं, इस दुनिया में चले जाते हैं या फिर किसी और गलत चीज पे चले, वो अपनी औलाद के मरने से ज्यादा गम देते हैं जो कुरान के बाद फिर दुनिया में चले जाएं, और सो ऑन। तो फिर असल कामयाबी क्या है, अब आपको समझ आ गई। फोर्थ बैरियर पे चलते हैं, और वो क्या है, डिसलॉयलिटी इन रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट्स। जो रिश्ते बनते हैं ना हमारे, देखिए एक खून के रिश्ते हैं वो तो हैं ही हैं माशाल्लाह, उसमें तो कोई डिसलॉयल हुआ तो वो तो मुजरिम हो ही गया। इसी तरह ये जो रिश्ते बनते हैं ना हमारे उस्ताद और शागिर्द के, साथ काम करने वालों के और एक ही फील्ड के लोगों के, और सो ऑन, और वो जगहों से भी प्यार होता है। देखिए हम सबसे ज़्यादा मेरे हले के इस चीज़ को डिसलाइक करते हैं कि कोई मसलकों में बटे, जमातों में बटे, गिरोहों में बटे, उस्तादों के नामों पे बटे, सो ऑन। लेकिन इन सारी चीज़ों को पीछे कर दे, मोहब्बत फिर भी होती है अपनी जगह से। अपने स्कूल के नाम से वो प्यार होता है जो अपनी ज़ात के नाम से, हम शेख हैं जी, तुम सैयद हैं जी, तो हम तो गुज्जर हैं जी, तो हम तो राही हैं, हर एक से पूछिए, प्यार तो होता है। माँ बाप सर आंखों पे, उस्ताद से भी प्यार होता है। 50 लोगों की आप ऑडियो सुन लें, फायदा भी आपको ले लेंगे आप, पर जो वो बोंड बनता है और जो कहते हैं ना कि समझ आती है बात की, और जिसको सुन के दिल करता है ना मानने को, वो अपना उस्ताद होता है, जो अंधेरों से रोशनी पिलाता है, जो पहला उस्ताद होता है जिससे हिदायत का दरवाजा खुलता है, बंदा उसको कभी भूल नहीं सकता, इल्ला ये कि कुछ नफ्स की शरारतें बीच में आ जाए। क्या मैं ही बहुत बड़ा हूँ उस्ताद को सलाम करूँ, और उस्ताद वो तो आप छोड़ो, मुझे बड़े और अच्छे अच्छे उस्ताद मिल गए हैं, और बहुत हुआ तो कहा नहीं, उस्ताद साहब बड़े अच्छे हैं जी माशाल्लाह, उनको एक जोड़ा लेकर भेज देते हैं, उनकी खिदमत कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, लॉयलिटी, बीइंग लॉयल इज कह ले के रोड टू सक्सेस, इसमें कमी हो जाती है। और ये कब होता है लिख लें, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि बॉन्ड तो होता है, जैसे मैके से प्यार नहीं होता तो मैके ही तो होता है हमारा, जिस घर में हमारा दीन पैदा होता है। इमाम शाफी का कौल याद आ गया कि दो ही दिन है बंदे की जिंदगी में अहम होते हैं, एक वो जिससे वो पैदा होता है, और वो दूसरा जिसे उसको पता चलता है कि क्यों पैदा हुआ। कुछ कहते इमाम मालिक है, किसी का भी था बस अच्छा कौल है। तो वो क्या होती है, वो ताल्लुकदारी, ये गड़बड़ कब होती है, जब एक की जगह दो मास्टर्स हो जाते हैं। इसके ऊपर एक अलग सेशन करेंगे, इस वक्त इसको छोड़ने की जरूरत नहीं। डिफरेंस इन हैविंग वन मास्टर और मोर देन वन मास्टर्स, कुरान ने इसको कहाँ लिखा है, याद आ गई होगी आयत, दो आयतें आपके सामने है, सूरत मुल्क, अफ मैं यमशी मुकिबन अला वजहिही अहदा अम मैं यमशी सवीयन अला सिरातिम मुस्तकीम। अच्छा वो शख्स ज्यादा हिदायत वाला है जो अपने सर के बल ऊंधा होकर चले, या वो जो सीधा पैरों के बल राहे रास पर चला हो। और इसी तरह सूरत नहल की भी एक आयत बड़ी खूबसूरत है कि एक वो शख्स है जिसका एक ही आका है और एक वो है जिसके कई आका है, तो बताओ अच्छा हाल किसका है। और अगर इन दोनों को भी छोड़ देना तो बस इतनी सी बात समझ लीजिए, जब तक हम अपने एक मकसद पे चलकर एक ही जगह पे लगे होते हैं ना, तो हमारी लॉयलिटीज और हमारी खैर ज़्यादा होती है। जब दो में जाते हैं तो क्या होता है, ये आगे आने लगी है बैरियर, उस पर शायद मज़ीद थोड़ी बात करूँ, अभी इसको दिल नहीं कर रहा टच करने को। लेकिन जब तक आप सीधे चलते हैं ना, आप लॉयल भी होते हैं, कमिटमेंट भी करते हैं। देखिए ना, एक औरत की दो मर्दों से शादी एक ही वक्त में नहीं चल सकती, एक मर्द की चल जाती है चार औरतों से भी, पता नहीं होता क्या होगा उनके साथ आज के दौर की बीवियां हो तो, लेकिन चलती है ना, फर्क किस बात का समझ लें, क्योंकि मर्द का एक दर्जा औरत के एक दर्जे से ज्यादा है। एक औरत दो मर्दों के बीच में हो किसको खुश करे, पहली बात है हर वक्त ही वो गुनाहगार होगी, एक का तकाजा कुछ है तो दूसरे का कुछ और है। कहते बारियां लगा दे, जैसे मर्द भी बीवियों के साथ बारी लगाता है, तो औरत की भी एक दिन एक मर्द के साथ तो दूसरे दिन दूसरे के साथ, सोच के भी घिन नहीं आती, वो गुनाहगार होगी, वो गिल्ट में होगी, आखिर खुदकुशी कर लेगी वो बेचारी, फिर वो दोनों को नई बीवी ढूंढनी पड़ेगी। याद रखिए, जब हम फितरत के असूलों को देखें ना, तो एक खुदा, दो के साथ गड़बड़, तीन तो फिर तीन, तो बंदा दो को खुश नहीं कर सकता। मासी है ना घरों में, एक घर में सुबह से शाम तक रहती, उधर ही पीछे फ्लैट में सोती भी है, रोटी भी उसके नाम, पानी भी, क्योंकि पता है मासी ने इधर ही खाना है, कपड़े भी, गर्मी भी, सर्दी भी, शब रात भी, जो कुछ लेने देने हैं उन्होंने ही देना, कि भाई जाएगी किधर। और वो भी बेचारी सुबह से आके किचन में काम करती है, शाम हो जाती है वो अंदर ही रहती है। इसके बरक्स वो मासियां आप देखे हैं जो घर घर जाती हैं, हर घर में जाते ही पहले उनका डांट से इस्तकबाल होता है, आ गई हैं आप, और जाने की कोशिश में आधा पौना घंटा उसका एक्स्ट्रा लग जाता है, ये भी कर दो वो भी कर दो, ये बाजी खुश कर गई है तो वो अगली बाजी नाराज़। ये असल वो चीज़ है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को ख़राब करती है। दरख्त को एक जगह लगाइए, फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी से उठाइए, तीसरी में वो मुरझा जाता है। शुक्र करें एक ही जगह अल्लाह ने हमारे पाँव जमा दिए ना, हम जैसों को लेना किसने था। और मैं तो कहती हूँ मैं नूर कुरान वालों की बड़ी मशकूर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कभी ना छोड़ के जाऊँ इनको, क्योंकि मेरे जैसे बेकार बंदे को कारामत बनाने वाले भी यही है ना। चलिए अब होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दो चीज़ों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, सोच का फ़र्क, तरीक़ेकार का फ़र्क। सगी दो बहनें एक माँ के घर से जाती हैं, दोनों के घर डिफरेंट होते हैं, घर चलाने का अंदाज़, सफाई का अंदाज़, खाने का, पीने का डीलिंग, आप सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कोई एक भी के ऐसा नहीं होता। हमेशा फ़र्क, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट का हमेशा फ़र्क होता है, चाहे एक इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग क्यों ना हो। आप सारी कोशिशों में बिखरे किस पे रहेंगे, वो अच्छा के ये अच्छा, कई दफ़ा लोग कहते हैं, और मैं कहती हूँ जब लोग एक ही बात सुन रहे होते हैं उनको समझ आती है। जैसे आप देखिए कि बचपन से हमने लेकर मैट्रिक तक एक ही स्कूल में पढ़ा, तो टीचरों को भी पता है हम कितने पानी में, उनको भी पता है, आखिर में वो हमें बोर्ड के पेपर तक किस काबिल तो कर ही देते हैं ना कि हम मैट्रिक में पास हो जाएं। और एक बच्चे को आप इधर से उठाएं, फिर उधर डालें, फिर उधर से डालें इधर, इधर से उधर डालें, क्या होगा इन पे, हो सकता है उसको मैट्रिक में 2 साल लगाने पड़े। तो जड़ में पौधा लगा रहे ना तो अच्छा रहता है, जो ले ही अच्छा, ढूंढ के अच्छा रहे, और नसीब पर राजी रहे जो मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। और जिधर दूसरी जगह जाएगा, जैसे हमारे एक साथी हैं तो वो एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाते हैं, बच्चे ही नहीं सेट होते, स्कूल ही नहीं अभी सूट हो रहा, ये अच्छा कि वो अच्छा, वो कहते हैं उधर से आई इधर से। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ना उसके अंदर फिर इंसान की एनर्जी चली जाती है। मैं कहती हूँ जो एक किसी एक से भी, मेरे जैसे भी एवरेज टीचर से पढ़ रहा है ना, वो कल कहीं पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो लोग क्या कहते हैं, हम बड़े क्लिप सुनते हैं, हम उसको भी सुनते हैं, उसको, आप क्या कर रहे हैं, आप टीचरों को चेक कर रहे हैं। एक टीचर होता है ना, वो अपने स्टूडेंट्स को ग्रेड्स देता है कि ये इतने अच्छे नंबर ले रहा है वो, और जो कई को सुनते हैं ना, वो टीचरों के पेपर चेक कर रहे होते हैं कि फ़लाँ बड़ा तेज़ बोलता है, फ़लाँ बड़ा जल्दी बोलता है, फ़लाँ बड़ी डिटेल बताता है, फ़लाँ नहीं बताता, फ़लाँ सो जाते हैं उसकी क्लास में, ये वो, आप टीचरों के पेपर्स लेकर घर आ जाते हैं। तो याद रखिए, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, तवाज़ुन और दिल का इत्मीनान और खुशी, कितनी चीज़ें बोली हैं मैंने, 1 2 3 4 5 चीज़ें, 5 उंगलियों पर लिख लें। बी लॉयल और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते जाएं, जहाँ कहीं कोई बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, आता है माँ बेटी में भी आता है, बाकी ससुराली रिश्तों में तो बहुत ही आता है, दीन के नाम पे भी आता है। मैनेजमेंट के साथ इमाम साहब का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, सॉल्व इट वहीं कीजिए। मसलन इमाम साहब है मस्जिद में, 4 6 ब्रदर्स ने मिलकर मस्जिद की बुनियाद रखी, चलो जी काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह पैसा लिया दिया किया, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, सुनाइए वो मस्जिद का क्या ना, जो झगड़ा हो गया, वो इमाम साहब तो चले गए और वो इमाम साहब को तो निकाल दिया, और बाकी क्या हुआ, वो कहते 2 हो गई, क्योंकि जी वो मैनेजमेंट में झगड़ा पड़ गया, वो जो स्थिरे कह लीजिए या आप उनको डायरेक्टर्स, और जो आपकी सारी फाउंडर्स से वही निकल गए। अब बताइए जिधर से फाउंडर निकल गए वो बुनियाद गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो याद रखिए इतना वक्त ना ज़ाया करें अपना, साहबे कराम की बहुत सी मिसालें हैं, सलफ सालेहीन की ज़िंदगी की मिसालें लीजिए कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खूबसूरत तरीके से दीन की खिदमत भी की और उसको लिया। और एक लॉयलिटी जो बड़ी ज़रूरी है वो कमिटमेंट के साथ लॉयलिटी है, सोने जैसा भी बंदा हो ना, कमिटेड ना हो और कमिट करके ना आए तो आप तो 2,000 रुपये पर उस मासी को ना रखें जो आज सारा कुछ कह के जाए, अगले दिन आई ना सुबह। आप में गुण है कि नहीं, आप कैसा पढ़ाते हैं, आप कैसा कंप्यूटर चलाते हैं, आप अपनी जो भी जिम्मेदारी दी वो तो बड़ी अच्छी है, आपसे बेहतर शख्स इस शहर में नहीं था जो उस इदारे को मिलता, पर आप कमिटेड नहीं है, कभी किया कभी नहीं, कभी आए कभी गए, तो आपको उठाकर बाहर फेंकेंगे और कोई आपसे कम खूबियों वाला बंदा वो ले आएंगे, वो चल जाएगा इदारा, आप डुबो देंगे उसको। तो फिर इससे क्या पता चला कि अपने आप को बेहतर करना है। फिर आप देखिए कि जब गैर मौसर कारकर्दगी होती है ना तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ते हैं, ढीली मैनेजमेंट जहाँ होगी ना वहाँ साथी आपस में बहुत बदगुमान होंगे। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, सबका दिल लगेगा उस घर में, जैसे जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते रहें तो मेहमानों ने कुमार है ना, वो कहेंगे नहीं आए थे 4 दिन के लिए, हमें जल्दी जाने दीजिए, हमारा दिल नहीं इधर लग रहा। करें क्या? जब भी कभी भी जिंदगी में इस तरीके की गू मगू की जंग में होते हैं ना, तो खतरे पता क्या होते हैं? पहली चीज़ देखिए कि मुनासिब लोगों से उनकी सलाहियतों के मुताबिक काम ही नहीं लिया जाता। मैं आपको ऐसी दसियों मिसालें दे सकती हूँ, हीरे मोती पड़े हुए हैं दुनिया में, पास पड़े होते हैं, लोग उनसे फ़ायदा नहीं उठाते। बाहर से आपको कहेंगे आएँ ज़रा हमारा स्कूल ठीक कर दें, आएँ हमारे इदारे को आप ले लें, प्लीज़ इसकी मैनेजमेंट आप ले लें। वो अच्छे लोग होते हैं, जैसे कई लोग ऐसे हैं जो फीलिंग्स ये देते हैं हमारे पास कोई अच्छा बंदा नहीं, निकम्मे बेकार है ही नहीं, तो है ही नहीं, करना ही खुद पड़ता है। और यकीन करें आप थोड़ा सा वक्त गुजारे, कई लोग आपके कानों में आके कहेंगे आप अम्मा जी से कहें ना जरा हमें भी तो काम करने दें, ये हमें मौका ही नहीं देती, ये कहते मैं नहीं पढ़ाना है, चाहे मेरे से बोला जाए कि ना बोला जाए, गलत तरीका है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि गैर मौसर कारकर्दगी कहाँ होती है, जहाँ वसाइल और असबाब ही नहीं होते। और ये एक बड़ा सवाल है, लोग कहते हैं ये सारा सेटअप बन कैसे जाता है, हमारे पास असबाब ही नहीं। एक जगह मुझे किसी ने बुलाया, बड़ी ऐसी यानी कह लीजिए कि बहुत सारे और ट्रिप्स में से एक नई जगह पे हम बुलाएं, तो बार बार वो कहें कि आप आएँ हमारी कमी देखें, हमें बताएं कैसे इदारा चलता है। तो मैं अपनी आदत और मेरा पैशन है, बिस्मिल्ला, आपका क्या नाम है मुझे क्या लगे आप कौन है, जब दीन है और कुरान सुन्नत है तो बिस्मिल्ला। अच्छा मैं जब जाती हूँ फिर थोड़ी देर हम बात कर करा के, या पहले भी मैं कहती हूँ मुझे बताइए आपके क्या हालात हैं और कैसी चीज़ है, मैं कहाँ आपकी हेल्प करूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। आप लंबी बात को छोटा कर दो, अंदर मसला निकला ये पैसों का इंतज़ाम कैसे करें, हमारे इदारे के अंदर खर्चे बड़े पैसे बड़े, ये आप लोगों को कौन सपोर्ट करता है। यानी सारी बात में जो एंड पे उन्होंने मुझसे मदद चाही थी वो ये थी कि ये इतना कुछ जिन पैसों से होते वो पैसे कहाँ से आते हैं। मैंने कहा आपने बड़े गलत बंदे को बुलाया, मेरा तो ये फील्ड ही नहीं है जिस पे आपने मुझसे पूछा, सॉरी मैं आपकी क्या हेल्प करूँ। हमें तो इतना पता है कि आज तक पिछले 20 साल से लेकर आज तक खड़े हैं, एक दफ़ा हमारे किसी स्कूल में पैसों का कभी इशू नहीं हुआ। ये भी एक पता नहीं अल्लाह की क्या हिकमत है, मिट्टी में हाथ डालें सोना बनता है। लोग कहेंगे आप अमेरिका में जो हैं, आप कनाडा में रहीं और आप अमेरिका में और आप यूरोप में, जोहराबाद जाके आज भी देख लीजिए, अल्लाह का हुक्म अल्लाह की रहमत है, कभी पैसों का मसला नहीं हुआ। गरीब तरीन इलाकों के गिर्द घुमा हुआ वो शहर है, पैसों का कभी इशू नहीं हमें हुआ। गम ये पड़ा रहता है कि जो दे रहे हैं उनका जवाबदेही के साथ लगे और सही जगह लगे। और फिर एक और चीज़ है, काम पे तवज्जो नहीं, चंदे इकट्ठे करो। नहीं जी, जाने नहीं देंगे जब तक चंदा ना हो जाए, तो काम की तवज्जो ख़त्म। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट, जिस इदारे के अंदर अपने ही मसले बड़े, जिसको मैं प्यार से कहती हूँ खपाइयाँ ही लगी रहती हैं, जब आपने हर वक्त यही खपते रहना है फलां अब इंसारुल्ला किधर है जी, और वो फलां एडमिन को क्या हुआ, वो फलां जिम्मेदार कहाँ से हो गए, बताएं उन्होंने खाक खिदमत करनी है माशरे की और वो कहाँ से प्रोडक्टिव होंगे। यानी दरख्त अपने ही गम मनाता रहे तो फल कैसे देगा। ये बहुत बड़ी वजह आज हमारे दीन के कामों में कि हमारे अपने ज़ाती मसाइल ही बहुत सारे होते हैं।